ये तो हम जानते हैं कि जीवन क्या है। संसार में हम देह धारण करके आते हैं और संसार के सुख भोगने के लिए जीते हैं। या यूं कह लें कि इंद्रिय भोगों के लिए जीते हैं। इससे हटकर संसार में जीने का कोई और उद्देश्य नहीं होता, चाहे वो अपने बारे में हो, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे वो समाज के बारे में हो। सबके जीने का एक ही उद्देश्य है कि किसी को दुख ना मिले और सुख की प्राप्ति उसको अधिक से अधिक हो। इसको ही जीना कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि वासना ही जीवन है। हर मनुष्य की जो परेशानी है वो एक ही है, जो उसकी इच्छा है जब वो पूरी नहीं होती है तब वो परेशान होता है। और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए जीने का मतलब संसार में इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीना, या यूं कहने की सुख प्राप्ति के लिए जीना। लेकिन ये जो जीवन है इससे हमको मिलता क्या है? सुख से आगे हमारा कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। लेकिन सत्पुरुष जो भी धरती पर आता है वो इसका विश्लेषण हमारे आगे पेश करता है। वो कहते हैं कि आप सुख प्राप्ति के लिए जीते हो और दूसरी चीज जीवन को बनाए रखना चाहते हो। जीवन का मतलब शारीरिक जीवन। लेकिन आपको इस बात का बोध नहीं है कि दोनों ही चीजें आपको नहीं मिल पाती। सुख भी आपका छिन जाता है और जीवन भी आपका छिन जाता है। तो फिर आपका जीवन निरुद्देश्य हुआ या नहीं हुआ? जिसके लिए हम जी रहे हैं, प्रकृति हमसे दोनों ही चीज छीन लेती है, तो हमारे जीने का फिर क्या उद्देश्य हुआ? सुख प्राप्ति के लिए हम जो भी जीवन अपनाते हैं, जन्म लेने से लेकर मृत्यु की प्राप्ति तक, सब जानते हैं इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ का हर पड़ाव पार करने के लिए इस मनुष्य को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बचपन तो अबोध हालत में बीतता ही है, समझ ही नहीं होती जिंदगी की। जैसे जानवर की हालत होती है ऐसी बच्चों की हालत होती है। मन में जो इच्छा होती है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो रोएंगे, वो परेशान होंगे। और बच्चे अपनी इस अज्ञानता के कारण कितने परेशान होते हैं ये माता पिता समझते हैं अच्छी तरह से। वो कहते हैं कोई कारण नहीं है इनके परेशान होने का, फिर भी परेशान हो रहे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम याद करते हैं बचपन हमारा कितना सुहाना था, कोई चिंता फिक्र ही नहीं थी हमको, कोई भविष्य की प्लानिंग ही नहीं थी, कोई दिमाग पर बोझ ही नहीं था, जिंदगी का कोई बोझ नहीं था, क्योंकि बच्चे के जिंदगी का बोझ उसके दिमाग पर नहीं होता। तो हम कहते हैं कितने अच्छे दिन थे वो। लेकिन यदि हम विचार की दृष्टि से बच्चे के जीवन को देखें, कितना लाचार है वो, आज़ादी से खेल नहीं सकता, आज़ादी से खा नहीं सकता, आज़ादी से कहीं बैठ नहीं सकता, हर जगह उसके लिए बंधन खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि माँ जानती है कि इसकी जान को खतरा है, कोई उठा के ले जाएगा, मनचाहा कहीं घूम नहीं सकता वो, कहीं चोट लग जाएगी उसे। तो आप देखिए कि एक दृष्टिकोण बदलने से आप कितने कंफ्यूज्ड नतीजे पर पहुंच जाते हो। जो बचपन बेचैनी और दुख की पराकाष्ठा है और बड़े होके यदि मदहोशी में रहकर सोचो तो ये कहोगे क्या सुहाना बचपन था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई चिंता फिक्र नहीं थी, ऐसे तो करते हम लोग। तो आप विचार करके देखो कि मेरे ही दो निर्णय हैं, ये मेरी बुद्धि के दो निर्णय हैं उसी बचपन के बारे में। तो एक निर्णय आपका बता रहा है कि ये बचपन जल्दी से बीतना चाहिए, आगे कुछ समझ तो आए, बेवकूफी में मैं रोता रहता हूं। लेकिन दूसरे एंगल से देखते हो, जब जवानी का और बुढ़ापे का बोझ आता है आपके ऊपर, निराशा मन में आती है, जिम्मेदारियां सिर पर सवार होती हैं, उसके कारण आप कहते हो कि ये चीजें तो बचपन में थी नहीं, इसलिए वो बड़ा सुहाना समय था। तो कभी एक ही जीवन को हम दुखमय कहते हैं, कभी एक ही जीवन को सुहाना कहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी बुद्धि का निर्णय है। और ये एक आस्पेक्ट में नहीं, हर आस्पेक्ट में हम यही गलती करते हैं। इसलिए सत्पुरुषों ने इस प्रकृति का विज्ञान शास्त्रों में बारीकी से लिखा और उसका एनालिसिस किया। आप संताविलास पढ़कर देखो, महाराज जी ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं इस निर्णय को, पूरे के पूरे चैप्टर उन्होंने लिख दिए इसको। हम सुख के नशे में जीते हैं कि सुख प्राप्त होगा, वो कहते हैं सुख से ही दुख का जन्म होता है। अब आप बताइए, हमारी बुद्धि का, संसारियों की बुद्धि का निर्णय यह है कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुख इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन सत्पुरुष लिख रहा है वो तो सत्य लिख रहा है, वो तो सर्वज्ञाता बुद्धि है उसकी, तो वहां तो कोई संशय है ही नहीं। हमारी तो सारी जिंदगी संशय में बुद्धि ग्रस्त रहती है, लेकिन सत्पुरुष की बुद्धि संशयुक्त तो नहीं कहलाती। तो वो बुद्धि निर्णय कर रही है कि सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। तो मैंने यदि सुख भोगने की लंबी तैयारी की है इस जिंदगी में, उस लक्ष्य को लेकर चला हूं, तो कितना दुख मुझे भोगना पड़ेगा विचार करके देखो। और दूसरी बात महाराज जी लिख रहे हैं, हर सुख का अंत दुख में होता है। तो बताइए कि जो मनुष्य सुख का लक्ष्य लेकर, चाहे उसके सुख के आइटम्स कोई भी किनो, किसी की शादी नहीं हो रही है तो कहता शादी का सुख है, सबसे बड़ा सुख यही है उसके लिए। किसी की पढ़ाई का, पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, कह रहा है पढ़ाई का सुख है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी का सुख देखता है। बिजनेस किसी का खड़ा नहीं हो रहा ठीक से तो बिजनेस का सुख देखता है, जो भी उसके आस्पेक्ट है। लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं हर सुख का अंत दुख में होता है। जवानी का कितना सुख है सब जानते हैं, कैसे इतरा इतरा के आदमी चलता है जब जवान होता है। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना एक्टिव हूं, हर चीज वो दिखाता है, बड़ी उमंग होती है उसके अंदर। लेकिन वही जवानी बुढ़ापे में बदलती है नहीं बदलती है? ये हर व्यक्ति के जीवन का प्रैक्टिकल फैक्ट है या नहीं। तो जवान आदमी को यदि बूढ़े शरीर की, अपने ही बूढ़े शरीर की याद आएगी तो ये जवानी का दिखावा नहीं करेगा फिर, लेकिन उसको भूला रहता है। तो जो सुख तुझको आज मिल रहा है वो दुख में बदलेगा ही। कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हर चीज के बारे में आप कहां तक विचार करोगे? हर सुख जो तुझको आज मिला है वो दुख में बदलेगा ही, उसका वक्त कब आएगा ये आप हो सकता है ना जानते हो। लेकिन जो विचारवान है अर्थात जिन्हें, जिसने शास्त्र का स्वाध्याय किया है, उनके निर्णय को जिसने समझा है, वो कंफ्यूज नहीं रहता। और ये निर्णय महाजी का नहीं है, आज का जो आज का निर्णय है, वैदिक काल से यह निर्णय चला है। कठोपनिषद में निर्णय आया ये, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तये, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। आप कहोगे सुख भी तो है, आप यही तो कहोगे सुख भी तो है, लेकिन उपनिषद कह रहा है कि सब कुछ दुख ही है। महाजी की वाणी क्या कह रही है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट, ये है जीने का रास्ता। तूने तो ये सोचना था इस घने कलेश से मैं कैसे मुक्त हूं, इसके लिए तूने जीवन जीना था। तू घने कलेश को बढ़ाने के लिए जीवन जी रहा, क्योंकि महाजी की वाणी तो आज के युग की है और उपनिषद हजारों साल पुराने। तो निर्णय वहां भी यही है कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। तो फिर जीने का रास्ता कौन सा है, काम भोगान निवर्तयेत, जीने का रास्ता है, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। अब बताइए संसार के लोगों की उल्टी चाल है या नहीं है, जीवन जीना था मैंने कामनाओं भोगों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, मैं जीवन जी रहा हूं कामनाओं भोगों को बढ़ाने के लिए, इसमें डूब मरने के लिए। अब ऐसी उल्टी बुद्धि वाले लोगों को कौन समझाएगा बताइए, आपकी बात सुनेंगे कभी वो, क्योंकि जो उन्हें लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनकी नकल कर रहे हैं सीधी। जीने का तरीका यही है कि जो जैसा कर रहा है और जिसमें आपको उनका सुखी जीवन नजर आ रहा है, बस वही आप एडॉप्ट कर लेते हो, उसमें कुछ चीजें छांट लेते हो, अपना वक्त लगा देते हो, उसमें जिंदगी खत्म हो जाती। जब अनुभव होता है तब तक पता लगा जिंदगी तो गई। तो महाजी कहते हैं प्रेमी ये मनुष्य निराशा लेकर ही जीता है, अर्थात मानसिक क्लेश लेकर ही जीता है, और मानसिक क्लेश लेकर ही संसार से विदा हो जाता है, अर्थात यह देह छूट जाती है, नई देह फिर मिल जाती है उसको। तो मिला क्या इसको, जीवन भर आप देखो ना हर व्यक्ति दौड़ी लगाता रहता है। एक ऑफिस में कोई क्लर्क अपॉइंट हो गया और किसी भी क्लर्क की मानसिक स्थिति देखो, हमेशा मेरा 10 साल बाद प्रमोशन होगा, 15 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, मैं ऑफिस असिस्टेंट बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, ख्वाब देखता रहता है। और ये जिंदगी सारी जिंदगी ख्वाब देखता है, कहता कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर हो जाऊं, कुछ इज्जत की पोस्ट के साथ रिटायर तो हो जाऊं, कल्पना बनाता रहता है। और इस कल्पना में कितना निराश होता है, किसी का समय से प्रमोशन नहीं होता, किसी को कोई चार्जशीट इश्यू हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। ये तो एक आइटम है, घर में कितने आइटम है, सोसाइटी में कितने आइटम है, हर आइटम उसको परेशान करता है और हर आइटम दुख के बीज उसके जीवन में बोता है। और जो कमी मेरे जीवन में है वो कमी दूसरे के जीवन में यदि नहीं है तो मैं निर्णय ये कर लेता हूं, देखो ये सुखी है मैं दुखी हूं। किसी के बच्चे नहीं है मान लिया तो क्या देखता है वो, अरे इसके तो बच्चे हैं घर में, देखो कैसे किलकारी मार रहे हैं, कैसे घर में रौनक लगी हुई है, कितना आनंद आ रहा है इनको, अब वो ख्वाब इकट्ठे कर रहा है। और जिसके बच्चे हैं वो कह रहा है कब ये 15 साल के हों, इनकी नादानियां खत्म हों, मुझे कुछ वक्त मिले अपने लिए जीने के लिए, इनकी जिम्मेदारी करते करते बुढ़ापा आने को है, इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। परिवार में 2 बच्चे भी होते हैं तो कितना लंबा हमको बोझ उनका सहना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारी से गुजरना पड़ता है सब पारिवारिक लोग जानते हैं, लेकिन जिसके नहीं है वो सुहाना ही ख्याल बनाता है उसके बारे में। तो इसलिए महाजी कहते हैं, प्रेमी ये मनुष्य देखा देखी सुख की कल्पनाएं गढ़ लेता है और फंस जाता है। जब जिंदगी के अनुभव से गुजरता है तब कहता है मैंने फालतू में ये कल्पनाएं बना ली, इसमें क्या था। तो इन जनरल सब कुछ बात करते हैं कि भाई जब तक आप इसका सही सही एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए उन्होंने पूरा विज्ञान पेश किया, खाली ऐसा नहीं है एक दो बात आपसे कह दी हो, पूरा विज्ञान पेश किया कि सारा जो प्रकृति का चक्र है आप देखते हो, सारी जो प्रकृति है ये पांच तत्व की रचना है। धरती की रचना किसकी है? पांच तत्व की। और देह की रचना भी पांच तत्व की है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वो कह रहे हैं इन पांच तत्व के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं ये पांच विकार से ग्रस्त होती हैं। जो भी अपने आप को देह समझता है कि मैं ये शरीर हूं ये देह हूं, तो वो ये पांच विकार से ही ग्रस्त रहता है और पांच विकार के अंतर्गत ही उसकी सारी इच्छाएं होती हैं। और पांच विकार के बारे में निर्णय वाणी करिए, पांच विकार महात खुदाई जले सकल संसारा। और इससे मुक्ति का रास्ता परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। वहां भी यही निर्णय है। तो विचार करने की बात है कि क्या मेरी सोच इससे ऊपर है, क्या मेरी सोच इससे ऊपर है। तो आप बार बार हर तरीके से विचार करके देख लो, जो भी संसारी मनुष्य है जो अध्यात्म का राज नहीं समझता, आध्यात्मिक शिक्षा उसकी नहीं हुई है, तो इससे हटके कुछ सोच हो सकती है क्या उसकी? तो हमारी निगाह में यही जीवन है। पांच विकार जो मनुष्य के मन के अंदर क्लेश पैदा करते हैं ये हमारा जीवन है। प्लानिंग करके जीते हैं इसकी हम। तो ये जो विकारी जीवन है इससे छुटकारा दिलाने के लिए गुरु हमको शिष्य बनाता है। जो भी वो पात्र समझता है उसको वो शिष्य बनाता है और ये शिक्षा उसको सिखाता है। अब बताइए मुझे, गुरु आपको क्या शिक्षा सिखाएगा? ये सारा जो जीवन है हमारा ये तो विकारी जीवन है, तो इन विकारों से मुक्त होने वाला रास्ता बताएगा या इन विकारों में डूबने वाला रास्ता बताएगा? तुम किसी प्रोफेसर के पास चले जाओ, संसार के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास चले जाओ, वो आपको इन पांच विकारों में फंसाने वाला ही रास्ता बताएगा। कोई कहेगा कि डॉक्टर बन जाओ, कोई कहेगा कि इंजीनियर बन जाओ, कोई कहेगा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, बस यही पाठ पढ़ाएगा। तो आपको वो इन पांच विकार की मुसीबत में ही फंसाएगा, जो भी संसार का गुरु। अब सत्पुरुष जानता है एक और राज को। वो कहता है तू अपने आप को समझ क्या रहा है, तू अपने आप को देह समझ रहा है जो तू है नहीं, तू जीव है जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, तू जीव है जो इस देह का मालिक है, जो इस देह के अंदर निवास कर रहा है और जो तेरे अंदर डिजायर्स उठ रही हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, जिस वासना के चक्र में तू फंसा हुआ है, वो जहां निवास करती है उसका नाम है मन, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, तो सारी मेरी डिजायर्स, सारे मेरे संस्कार, सारा मेरा स्वभाव मेरे मन के अंदर इकट्ठा है। तो ये जो जीव जीवन जी रहा है, शारीरिक जीवन, ये मन की जो तरंग उठ रही है इच्छा की, उसकी पूर्ति के लिए जी रहा है, क्योंकि जो इच्छा उठती है वो इसको बेचैन करती है। अब उस बेचैनी से बचने के लिए क्या करता है, ये देह के द्वारा उस इच्छा को संसार में पूरी करता है, फिर खुश होता है। खुशी किस चीज की है, वो जो बेचैनी पैदा हुई थी इच्छा उठने के कारण, अब वो बेचैनी खत्म हो गई ना, उस बेचैनी के खत्म होने को ये खुशी कह रहा है। इच्छा का विज्ञान तो ये है। अब किसी स्टूडेंट को एक इच्छा उठ गई मोटरसाइकिल खरीद दी, तो बेचैनी शुरू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जब ये इच्छा नहीं उठ रही थी तो क्या मोटरसाइकिल का वो बेचैन था? अब वो मोटरसाइकिल के कारण बेचैन है। और पता नहीं 3 साल में पूरी होगी इच्छा, या 2 साल में पूरी होगी, या 5 साल में पूरी होगी, या होगी भी या नहीं होगी पता नहीं। तो लगातार उसके मन के अंदर बोझ बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? तो इस बेचैनी से मुक्ति कब मिलती है, जो उसको मनचाही वस्तु मिल जाती है। इसको कहता है मुझे सुख मिल गया। जो कि सत्य यह है कि बेचैनी से मुक्ति मिली है, जो बेचैनी उसके अंदर ही उसके मन के द्वारा क्रिएट हुई थी। मिला क्या उसको? जी तो पहले भी रहा था, उस समय किसी और आइटम के लिए बेचैन था। तो इसीलिए निरंतर हमारी यही प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और हम समझ ही नहीं पाते। सुख के दिन याद कर रहे हैं कि वो चीज मिली थी बड़े सुखी हुए थे, वो चीज मिली थी बड़े सुखी हुए थे, बस ऐसी आगे लाइन लगी रहती है इच्छाओं की, पूरी करते रहते हैं, जिंदगी का वक्त आ जाता है, जिंदगी खत्म। लेकिन समस्या यह है कि जिंदगी खत्म नहीं होती। सत्पुरुष कहते हैं शरीर के साथ तेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो बात खत्म हो गई, फिर किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है इस मनुष्य को। लेकिन शरीर के साथ इसकी जिंदगी खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं वह सत्ता हूं, मैं वह जीव हूं जो देह के बारे में जानता है, मैं वह जीव हूं जो मन के बारे में जानता है। देह मन के बारे में नहीं जानती। आपका हाथ जानता है मन के बारे में कुछ? देह का कोई भी अंग मन के बारे में जानता है? मैं जानता हूं मन के बारे में। तो मैं जानने वाली सत्ता हूं। और वो कहते हैं जो जानने वाली चीज है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर चेतना है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जिसके अंदर चेतना है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो नष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए सारी सृष्टि में दो ही चीजें हैं जिसमें चेतना है। एक ईश्वर में चेतना है, ईश्वर जानता है। एक जीव में चेतना है, जीव जानता है। इसलिए जीव को ईश्वर का अंश कहा जाता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कहां विनाश हुआ जीव का? तो अब बताइए, मैं हूं अविनाशी और अपने आप को देह समझने के कारण मैं सारी जिंदगी मौत से डरता था, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। और इस गलत फहमी की कितनी सजा भोगता हूं, कितने दुख, कितने क्लेश, कितनी इच्छाओं के बंधन में जीता हूं। तो महाजी कह रहे हैं प्रेमी, तेरा जीवन तो असली जीवन तो तेरा ईश्वर में है, क्योंकि तू जीवित रहना चाहता है, तू होश में रहना चाहता है, और उन चीजों का संग करा जिसमें होश है ही नहीं। तो जीव को यदि जीवन चाहिए तो उसको जीवित वस्तु का संग करना पड़ेगा, वो तो ईश्वर है, और वो कहीं साथ में आसमान में नहीं है, वो तेरे शरीर के अंदर, क्योंकि तुझको पता है तेरा शरीर जीवित है और तू इसको जीवित नहीं रखे हुए, ये भी पता है तुझको। हर मनुष्य जानता है, हर डॉक्टर जानता है कि ये शरीर तभी तक चल रहा है जब तक जीवन सत्ता इसका संग नहीं छोड़ रही है, और उस जीवन सत्ता का नाम ईश्वर है। हर वैद्य जानता है इस बात के लिए, यदि मैं ईश्वर होता तो मैं जब तक चाहता देह को जीवित रखता, मैं मुझे पता है कि एक श्वास भी लेना मेरे बस की बात नहीं। जब तक वो जीवन शक्ति इस देह में मौजूद है तब तक देह चलेगी, नहीं तो मर जाएगी। तो ये मेरे जीवन का सत्य है या नहीं है, लेकिन क्या मैं इस तरह से कभी विचार करता हूं, क्या दुनिया के लोग इस तरह से विचार करते हैं? तो गुरु आपको वो विद्या दे रहा है जिसमें ये सारा आपका ही विज्ञान है, आपके मन का विज्ञान है और ईश्वर का विज्ञान है, जीव का विज्ञान है। तो बताइए, इस जीव की यानी मेरी सारी संपत्ति मेरे मन के अंदर है, जो कुछ भी मैंने कमाई की है। किसी ने झूठ बोलने की कमाई की है तो मन के अंदर संस्कार मेरे मैंने ऐसे इकट्ठे कर लिए कि बिना झूठ के मेरा गुजारा ही नहीं होता। और जिसने सत्य की कमाई की है उसको सजा दे दोगे तब भी झूठ नहीं बोलेगा, उसके संस्कार ऐसे दृढ़ हैं कि सत्य के बिना गुजारा नहीं होता। पापी आदमी जिसको तमोगुणी कहते हैं वो दूसरे को कष्ट ही देता रहता है सारी जिंदगी, घर वालों को कष्ट देगा, पड़ोसियों को कष्ट देगा, सोसाइटी में जहां रहेगा वहां कष्ट देगा, शैतानी से बाज नहीं आता। जो सतोगुणी वृत्ति वाला जीव है वो सेवा भाव से जीता है, लोगों से प्रेम करता है, लोगों के दुख में काम आता है, विनम्र होता है। तो सतोगुणी जो जीव है वो ये संस्कार मन में इकट्ठे करता है। तो बताइए, मेरी कमाई जो कुछ भी है, करने की कमाई मन में है या नहीं है आपकी? और ये मन लेके मैं दूसरी देह में ट्रांसफर होता हूं, क्योंकि ये देह तो मुझको ही पता है ये मर जाएगी, लेकिन ईश्वर का विधान है कि जब तक तेरे मन के अंदर कल्पना बाकी है तब तक तुझको नई देह मिलती ही रहेगी, लेकिन मिलेगी तेरे संस्कारों के अनुसार। जो तूने इस देह के अंदर, मानव देह के अंदर संस्कार बनाए हैं, जैसे तूने कर्म किए हैं, वही संस्कारों के अनुसार उसी को कर्मफल भोगने के लिए तुझको नई देह दी जाएगी। लेकिन जब मानव देह मिलती है तो उसमें वाणी साफ कह रही है उसके लिए कि मानुष जन्म सुफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। देखो वाणी तो ये कह रही है ना कि इस दुख से बचने के लिए, इस दुख से मुक्त होने के लिए तूने प्रभु की भक्ति करनी थी, प्रभु का सिमरन करना था, उस अंतर्यामी प्रभु को जिसके आधार पर यह शरीर का जीवन चल रहा है उसको जानने के लिए तूने जीवन व्यतीत करना था, और तू ऐसा मूर्ख निकला कि संसार के भोग इकट्ठे करने के लिए जीवन व्यतीत कर रहा है। जो तेरी मौत का कारण है, जो तेरे दुख का कारण है, उसके लिए तू जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है, संसार तेरा गुरु है। तो इसीलिए जो सतमार्ग है, जो गुरु का रास्ता है, जो गुरुमुख जीवन है, वो क्या है कि इन इंद्रिय भोगों से धीरे धीरे कैसे मुक्त हों, इस मन के बंधन से मैं कैसे धीरे धीरे मुक्त हों, ये जीने का वो रास्ता गुरु दिखाता है। तो जब आप अध्यात्म विद्या पढ़ते हो, गुरु का संग करते हो, तो आप मोटे रूप में जानते हो कि गुरु क्या सिखाता है। वो कहता है कि मैंने ईश्वर का संग किया था, मैंने उस ईश्वर का को प्राप्त किया या उसका अनुभव किया तो मेरे जीवन के दुख खत्म हो गए। गुरु अपने जीवन के द्वारा यह सिद्ध करता है ना कि मेरे मन में कोई क्लेश नहीं है, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी मान, कोई भी अपमान मेरे मन को हिला नहीं सकता, मेरे मन को बेचैन नहीं कर सकता, उसके अंदर एक करंट भी फ्लो नहीं हो सकती डिजायर की। परम शांत है, परम तृप्त है वो, और इतना शांत है, इतना तृप्त है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। महर्षि रमण के पास जिंदगी भर एक रुपया भी नहीं रहा जेब में, उनकी जेब ही नहीं थी, उनकी लंगोटी में रहते थे, लेकिन पूरी दुनिया के लोग वहीं तिरुवन्नमलाई पहुंच जाते थे। कहां तमिलनाडु, कहां उनकी भाषा, तमिलियन भाषा उनकी, दुनिया के लोगों की कौन कौन सी भाषाएं हैं, वहां क्यों पहुंच जाते थे भाई। और आज भी चले जाओ महर्षि रमण आश्रम में, कभी भी जाओगे कम से कम 50 तो आपको फॉरेनर्स मिल ही जाएंगे वहां पर, कभी भी चले जाओगे। और उन्हीं फॉरेनर्स का जीवन देख लो, जो भी वहां बस गए हैं जो, या जो आश्रम आते हैं, कि बड़े सादे से और उसी में रचने पचने की कोशिश करते हैं, वही जो बनता है वहां पर, उनका फूड भी नहीं है, वो वही आहार खाते हैं जो आश्रम में बनता है, और अपने को धन्य समझते हैं कि हम उस भोगवादी जीवन से प्रभु ने बचा लिया और यहां हमको लाकर रख दिया। तो अब बताइए क्या है महर्षि रमण के जीवन में जो ये दुनिया खींची चली आ रही है वहां पर, और हर सत्पुरुष का यही हाल होता है, जो भी उनके नजदीक जाता है वो अपना भाग्य समझता है, हे प्रभु कृपा कर दी तूने मुझको एक प्रॉफिट के आगे मुझे ला दिया, एक सदगुरु के संपर्क में मैं आ गया, उसका ज्ञान मुझे मिल रहा है। और ये कोई भारत में ये बात नहीं है, कहीं भी यदि सत्पुरुष हुआ है तो वहां यही स्थिति हुई है, जिस धरती पर भी जिस देश में भी सत्पुरुष हुआ है उसकी पूजा आज भी वहां होती ही है, उसको गालियां नहीं दी जाती। उनके जीते जी हो सकता है लोग गाली देते हो क्योंकि ना समझते वो, लेकिन जब उसके बारे में समझ आई तो वही समाज जिसने उनको मार दिया, जिसने उनको गालियां दी, वही समाज उनको पूछता है। ये पूरे विश्व का यही इतिहास है, पूरे विश्व का। इसका मतलब पूरा विश्व मूर्ख तो नहीं, सारा विश्व भोगवाद में फंसा हुआ है, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से उसी त्यागी को देखता है जिसके पास भोग का कोई भंडारी नहीं था, जो पूर्ण त्यागी था। तो अब बताइए चाहिए हम सबको भी शांति, ऐसा जीवन चाहिए कि मन में कोई डिजायर ना रहे तब भी मैं तृप्त रहूं। अभी तो मैं डिजायर के कारण तृप्त होता हूं ना, जब डिजायर पूरी होती है, मैं तो ये मेथड जानता हूं तृप्ति का। लेकिन सत्पुरुष के पास वो मेथड है कि मन में एक भी डिजायर ना हो लेकिन ये जीव परम तृप्त रहे, परम आनंदित रहे, परम शांत रहे। ये स्थिति सत्पुरुषों की होती है, जितने भी शिष्य धरती पर कहीं भी किसी सत्पुरुष के हुए उनका यही अनुभव रहा सत्पुरुषों के बारे। तो अब बताइए महाजी जब ये बात कहते हैं प्रेमी ईश्वर को पाना क्या है, जीते जी मरना है, तो क्या वो गलत कहते हैं? जिसको हम जीते जी मरना कहते हैं वो संसारियों की बात कर रहे हैं कि भोगों के प्रति मन उदासीन हो जाए, भोगों के प्रति संसारी डिजायर्स के प्रति मन उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो ये मन भोगों के प्रति मर गया या नहीं मर गया? जब आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जीते हो तो भोगों के लिए जी रहे हो आप, जब भोग वृत्ति आपके अंदर रही नहीं तो ये जीते जी मरना हो गया या नहीं हो गया? इसको वो मरना कह रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं प्रेमी, मर के जीवन मिलता है, ये भी तो कह रहे हैं, मर के जीवन मिलता है। जो इंद्रिय भोगों के प्रति मर गया उसको कौन मिलता है? अंतर्यामी जीवन मिलता है, जिसको ईश्वर कहते हैं। जीवन तो उसके अंदर है, वो है कॉन्शियस पावर। और मैं भी कॉन्शियस पावर हूं, मेरे अंदर भी चेतना है, तो इसीलिए ये जीव अचेतन से संबंध तोड़कर उस चेतन से जुड़ जाता है। जब अचेतन की डिजायर के अंदर खत्म हो गई तो एक ही डिजायर जीव में बचेगी, उस चेतन पावर की। उस जीवन शक्ति को। तो इसीलिए जैसे जैसे आपके अंदर सिंप्लिसिटी आती है, जैसे जैसे आपकी भोग वृत्ति कम होती है, जैसे जैसे आपको जिंदगी की समझ आती है, शास्त्र पढ़कर, संतावलास पढ़कर, गीता पढ़कर, जो भी सत्पुरुषों ने शास्त्रों की रचना की है, बात सब में एक ही लिखी है, वैसे वैसे मन जो है भोग वृत्ति के प्रति उदासीन होता रहता है, कहता है क्या रखा है इसमें, और ईश्वर के प्रति लालायित होता रहता है, उसकी लालसा उसके अंदर बढ़ती है, वो डिजायर इंटेंस होती रहती है, गहरी होती रहती है इसकी। तो अंतर्यामी ईश्वर जिसने आपको मानव देह दी ही इस वास्ते कि मानव देह धारण करके तू शास्त्रों का स्वाध्याय करेगा, गुरु का संग करेगा, अध्यात्म विद्या को सीखेगा और अंतर्यामी मुझ अंतर्यामी की तरफ प्रेम से बढ़ने की कोशिश करेगा। तो संसार की तरफ से तू धीरे धीरे मरता जाएगा और उस अमर ज्योति का संग करता जाएगा जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं। तो ये देह जो मौत का सागर थी ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन तू उस जीवन शक्ति से जुड़ जाएगा जहां मौत नहीं, जहां अमर जीवन है। तो इसलिए संसार के प्रति मैं जीते जी मर जाता हूं और ईश्वर के प्रति मैं जीवित हो जाता हूं। तो इसको महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी जीते जी मरना है, लेकिन कहते हैं मर के जीवन प्राप्त करना है। इसी को ईसा मसीह ने कहा था, फांसी पे दे दी गई इनको तो वो पुनर्जीवित हो उठे। पुनर्जीवित का मतलब ये देह खत्म हो गई और अमर जीवन शुरू हो गया, ये है पुनर्जीवन। सत्पुरुष के लिए इसको पुनर्जन्म कहा जाता है और हमारे लिए ये देह मरती है, दूसरी देह दे दी जाती है, इसको पुनर्जन्म कहा जाता है। शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ है। तो महाराज जी भी जो जीवन और मौत की बात कर रहे हैं उसके अर्थ उल्टे हैं। तो संसार में जीते जी मरना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मर जाते हो, इसका मतलब तुम वो जीवन मिलता है जो जीवन आपका कभी छिनता ही नहीं, जहां ना दुख है, जहां ना मौत है, ना जहां दुश्मन है, ना जहां राग है, ना जहां द्वेष है, वहां परम तृप्ति है, परम आनंद है और इटर्नल लाइफ है, सदैव का जीवन है। इसलिए जीना है तो उसके लिए जियो, इस मौत के लिए क्यों जी रहे हो, इस देह के लिए क्यों जी रहे हो, तो जिसका बारे में पता है कि ये मर जाएगी। तो ये है जीते जी मरना। ओम ब्रह्म।